था कि एक कंडीशन पूरा न हो रहा हो इसलिए नरसिंहदेव प्रकट नहीं हो पाते। जो प्रसिद्ध श्लोक है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, कि ब्रह्मा जी के वरदान को पूरा करने के लिए, उसे इंटैक्ट रखने के लिए, ब्रह्मा जी की लाज बचाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी कोई साधारण नहीं है, उन्होंने अगर वरदान दिया है तो आगे चलकर उनकी भी इमेज बरकरार रहनी चाहिए कि जो उन्होंने वरदान दिया है वो आगे चलकर भी जब लोग उनसे वरदान लें तो विश्वास से लें कि ये पूरा होगा। तो उसे इंटैक्ट रखते हुए इस पुरुषोत्तम के महीने में भगवान श्री नरसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। इसलिए आज हम हमारा रेगुलर भागवतम क्लास न लेकर हमने सोचा कि ये जो मलमास कहा गया था एक समय, इस महीने को जो मलमास हम अब नहीं कहते इसे, परंतु उसका उल्लेख करते हैं ये बताने के लिए कि कैसे जब भगवान पुरुषोत्तम की कृपा होती है किसी के ऊपर तो चाहे वो व्यक्ति मल के समान अयोग्य क्यों न हो, ऐसे अयोग्य व्यक्ति को भी भगवान योग्य बना देते हैं। नाथेना पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यम कंचित पुरुषाधमं कटिपय ग्रामेशम अल्पार्थदम सेवायै मृगया महे नरमहो मूढ़ो नरा का वयम। इस सुंदर श्लोक में महाराज कुलशेखर ने पुरुषोत्तम ये शब्द का इस्तेमाल किया है, भगवान को इस नाम से उल्लेख किया है। कौन सा महीना है ये? पुरुषोत्तम का महीना। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं, वो तुलना कर रहे हैं कि एक जो भगवान पुरुषोत्तम का भक्त और एक इस भौतिक संसार में जो देहात्म बुद्धि में है पुरुष अधम का भक्त, इस संसार के जो अधम पुरुष हैं उनकी सेवा में जो लगा हुआ है, और एक है जो भगवान पुरुषोत्तम की सेवा में लगा हुआ है। तो बहुत सुंदर कंपैरिजन उन्होंने किया है कि पुरुषोत्तम जिनके नाथ हैं और एक भौतिकतावादी जिसका पुरुष अधम कोई नाथ बना हुआ है। तो यदि कोई कलयुगी बुद्धि लगाकर, कैलकुलेटिव माइंड लगाकर यदि वो बैलेंस शीट बनाए, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस शीट होता है ना, तो बैलेंस शीट बनाए, तो बैलेंस शीट में एक तरफ है पुरुषोत्तम भगवान की सेवा और दूसरी तरफ है किसी पुरुष अधम की सेवा। तो उसमें महाराज कुलशेखर कहते हैं कि जब कोई पुरुषोत्तम की सेवा करने जाता है तो भगवान पुरुषोत्तम अपने सेवक को बदले में देते क्या है। अवश्य ही जब कोई किसी की सेवा कर रहा है तो उसके बदले में वो कुछ मुनाफा चाहता है, कुछ वेतन चाहता है, तो भगवान पुरुषोत्तम क्या देते हैं? वो अपने आप को दे देते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने स्वयं का धाम उस व्यक्ति को दे देते हैं। तो इसमें यदि हम हमारे भौतिक संसार की भाषा में बात करें तो कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा बॉस है किसी का कि उसके रिटायरमेंट के बाद वो बॉस बोले कि मेरी पूरी कंपनी तुम्हारी। हाँ ठीक है, पेंशन देते हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस पेंशन देते हैं, परंतु कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कौन सा ऐसा बॉस होगा जो कहेगा कि रिटायरमेंट के बाद मेरा बंगला तुम्हारा। यहां पर भगवान पुरुषोत्तम वो अपना स्वयं का लोक, वैकुंठ धाम, वो निवास स्थान बनाकर दे रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, बैक होम बैक टू गॉड हेड। ये हमारा जो इस संसार में आवर्तन आवागमन चल रहा है, यहां से पुरुष अधम से सेवानिवृत्त होने के पश्चात या पुरुषोत्तम की सेवा करने के पश्चात रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है? उनका स्वयं का धाम। तो कोई ये प्रश्न पूछे कि यदि इतना बड़ा बेनिफिट कोई दे रहा है, अगर आपके पुरुषोत्तम जो इस प्रकार के बॉस हैं कि अपने स्वयं का धाम दे रहे हैं, और वो भी चिंतामणि धाम, ऐसा नहीं कि कोई 2 BHK का फ्लैट है, जो चिंतामणि धाम अपना दे रहे हैं, तो फिर वो कसरत भी बहुत कराएंगे, मेहनत भी बहुत कराएंगे। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं कि एक पुरुष अधम की सेवा करने के लिए व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी बॉस प्रसन्न नहीं रहते, हर समय नुक्स निकालते रहते हैं, तो ये ठीक से नहीं करता, वो ठीक से नहीं करता, हर समय छुट्टी मांगता रहता है, ऑफिस में सोता रहता है। एक बहुत बड़ा जमींदार, उसने एक नए सेवक को, नौकर को नियुक्त किया घर के कामकाज के लिए। तो सब कुछ करता था वो, उसके लिए खाना बनाता था, परोसता था, मालिश करता था, उसकी सारी सेवाएं उसकी वो नौकर करता था। तो कुछ समय तक उसकी नौकरी इस प्रकार से ठीक प्रकार चल रही थी। एक दिन जमींदार, उसने उसके घर पर बहुत से बड़ी पार्टी रखी थी, तो सगे संबंधियों को, रिश्तेदार इत्यादि इनको बुलाया था। तो ये जो नौकर है, अब पूरे पार्टी में वो खाना परोस रहा है। तो दाल जब वो अपने मालिक को परोस रहा था, तो मालिक ने नए आलिशान कपड़े पहने थे, पूरा उसका खानदान आया हुआ है, उसका समाज आया हुआ है, तो नए कपड़े, पोशाक पहनी हुई थी। तो ये नौकर दाल परोसते परोसते दाल की कुछ छींटे, कुछ बूंदे इसके नए पोशाक पर गिर गए, मालिक के नए कपड़ों पर दाल की कुछ बूंदे गिर गए। मालिक आग बबूला, ऐसा क्रोधित हुआ, उसने तुरंत मृत्यु दंड करार दे दिया इस व्यक्ति को, कि इसका सर धड़ से अलग किया जाए। तो जैसे ही इस नौकर ने यह सुना, तो जो दाल का पतीला था, वो पूरे दाल का पतीला दाल से भरा हुआ उसके कपड़ों पे डाल दिया। तो ये गुस्से में तो था पहले से, परंतु अब आश्चर्यचकित गुस्सा था इसका, कि मैंने इसे मृत्यु दंड सुनाया और उसके पश्चात, उसके बावजूद ये पूरे दाल का पतीला मेरे ऊपर उल्टा कर रहा है। तो कुछ तो इसके पीछे इसने सोच विचार किया होगा। तो पूछा, मारने से पहले अपनी जिज्ञासा पूर्ति करना चाहता था, तो पूछा, भाई क्यों किया तुमने? तो बहुत सुंदर उसका विचार था। उसने कहा कि देखो मालिक, मुझे आपने मृत्यु दंड सुना दिया, और मेरा गुनाह क्या था, मैंने कुछ दाल की बूंदें आपके पोशाक, नए ड्रेस के ऊपर डाल दी थी गलती से। तो कल को जब मुझे मृत्यु दंड के विषय में सब लोग सुनेंगे, मेरे पूरा गांव सुनेगा, आसपास के गांव शहर सुनेंगे, तो भर्त्सना आपकी होगी, क्योंकि ये कोई इक्वल दंड नहीं है अपराध के अनुसार। अपराध के अनुसार दंड होना चाहिए ना, तो इक्वल दंड नहीं है। तो क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद आपकी इज्जत खराब हो, लोग आपके ऊपर उंगली उठाएं कि कैसा निर्दयी है ये व्यक्ति कि इतनी छोटे सी गलती के लिए मृत्यु दंड दे रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि गलती को बड़ा कर दूं। गलती को बड़ा कर दूं ताकि आपकी इज्जत बची रहे। तो इस संसार के जो पुरुष अधम हैं, जब कोई उनको संतुष्ट करने जाता है, तो उसे अपना खून पसीना बहा देना पड़ता है और फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते, फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। परंतु यहां पर महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम को संतुष्ट करने के लिए क्या करना है, यदि कोई जिह्वा से उनका नाम उच्चारण भी नहीं कर सकता, जो कि सबसे सरल उपाय बताया गया है इस कलयुग में, यदि वो भी नहीं कर सकता तो बताया गया है कि केवल भगवान का चिंतन करो, यदि उसमें भी मुंह दुखता है, जप करने में, हरिनाम लेने में भी यदि ये मुख दुख रहा है, तो बताया गया है कि केवल चिंतन करो। भगवान ये भी कह दिए अंत काले चमामेव स्मरण, केवल स्मरण करने से मुक्त कलेवरम, इस कलेवर से मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि कोई चिंतन करना भी नहीं चाहता तो बताया गया है कि अपने इस काया को उठाकर सत्संग में लाकर पटक दो। कोई कहेगा वो तो चिंतन और हरिनाम से ज्यादा मुश्किल है। तो केवल यदि कोई भगवान का महाप्रसाद चख ले, क्या उसमें कठिनाई है? उसमें कोई रंज करेगा, कोई शिकायत करता है कभी उस समय? तो ये बताया गया है कि भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करने के जो अलग अलग लेवल्स हैं, कि कोई इस संसार में कोई भी प्रकार का बहाना नहीं दे सकता कि इस कारण के वजह से मैं तुम्हारे पुरुषोत्तम की सेवा नहीं कर सकता। ये बताया गया है कि यदि जो भगवान के धाम होते हैं, जैसे ब्रजमंडल है, मथुरा मंडल है, यहां नासिक धाम है, ऐसे भगवान के धामों में यदि कोई लंबा सो भी जाता है, सोने के लिए तो लंबा ही होना पड़ेगा, यदि कोई लंबा सो भी जाता है तो भगवान उसको दंडवत के रूप में स्वीकार करते हैं। ये अलग बात है कि हम बैठे बैठे भी दंडवत देते हैं क्लास के समय, जपा के समय। यदि कोई इस प्रकार से लेट भी गया तो भगवान उसको दंडवत के रूप में स्वीकार करते हैं। कम वा दयालुम शरणम व्रजे म, इनसे दयालु, इनसे कृपालु और कौन हो सकते हैं? तो ये जो पुरुषोत्तम, जो पूरे सृष्टि के अधिपति हैं, और जो पुरुष अधम हैं, ये कुछ ग्राम, अल्प ग्रामेशम अर्थार्थम, बस कुछ अर्थ देते हैं और कुछ ग्राम, कुछ कंपनी, कुछ यहां वहां के प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। तो फिर यदि कोई कैलकुलेट भी करना चाहे कि भाई किसकी सेवा कर, बॉस कौन होना चाहिए हमारा, तो यहां पर ये जो हमारे बॉस हैं, ये जो हमारे मालिक हैं, पुरुषों में सबसे उत्तम, तो हम इन पुरुषोत्तम की सेवा करने का चयन करते हैं। न केवल इन कारणों के वजह से, ये सब तो बाह्य कारण है। महाराज कुलशेखर जो भौतिकतावादी विचार है उसको टटोलते हुए ये एक सामने प्रस्ताव रखे हैं, परंतु भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करने की जो निस्वार्थ भावना और जो संतुष्टि मिलती है शुद्ध भक्ति उनकी करने की, उसका रस ही अलग है। तो इसलिए जैसे भगवान श्री पुरुषोत्तम ने मलमास को इतना पुण्यवान बना दिया कि यदि इस पुरुषोत्तम मास में कोई एक नाम भी भगवान श्री पुरुषोत्तम का ले लेता है, एक माला भी कर लेता है, या एक किसी तीर्थ स्थान में स्नान कर लेता है, या फिर भक्तों का संग कर लेता है, तो हजार गुना मल्टीप्लाई होकर उसको उसका रिजल्ट्स मिलता है। तो इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम तो इस भौतिक संसार में हर प्रकार से अयोग्य हैं। एक सुंदर श्लोक में भगवान ने किन किन को, यदि भौतिक दृष्टिकोण से उनकी योग्यता देखी जाए, तो कैसे भौतिक दृष्टिकोण से ये लोग बिल्कुल अयोग्य थे, परंतु भगवान ने इनकी क्या योग्यता देखी, इनकी भक्ति देखी। तो इस एक श्लोक में श्रीपाद रूप गोस्वामी द्वारा संग्रहित ये एक श्लोक है, जिसके अंदर उन्होंने एक लिस्ट दी है, भगवान के ऐसे ऐसे प्रसिद्ध भक्तों की लिस्ट दी है जो कि भौतिक दृष्टिकोण से सब प्रकार से अयोग्य थे। व्याधस्य काचरण ध्रुवस्य चवयो विद्याम गजेन्द्रस्य का कुब्जायाम किमनु नामनो रूपम अधिकम सुदामनो किम तद्धनम वंश को विदुरस्य उग्रस्य किम पौरुषम भक्तिर तुष्यति केवलैर नच गुणैर भक्ति प्रियो माधव। तो इसमें, इस लिस्ट में, इस सूची में जिन भक्तों का नाम, सबसे पहले व्याधस्य का आचरण, एक व्याध, एक शिकारी था, उसके क्या आचरण थे। यहां पर रत्नाकर वाल्मीकि मुनि के विषय में भी कहा गया है और मृगरारी इस शिकारी के विषय में भी कहा गया है कि ये दोनों शिकारी थे। इनफैक्ट न केवल शिकारी बल्कि डकैत, डकैती भी करते, शिकार भी करते और इस प्रकार का नृशंस शिकार किया करते थे। तो ऐसे व्याध, इनका क्या आचरण था। यदि बाह्य रूप से इनकी योग्यता देखी जाए तो नारकीय जीवन इनके भविष्य में लिखा गया था। व्याधस्य का आचरण, क्या आचरण था इनका। तो यदि कोई कहे कि ठीक है, एक योग्यता किसी की होनी चाहिए कि कम से कम कोई थोड़ा वयस्क होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, तब जाकर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा मिलेगी, तो दूसरा उदाहरण दिया गया है ध्रुवस्य चवयो। ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज, उनकी आयु क्या थी। मराठी में बोलते ना, काय वय होता त्यांचं, ध्रुवस्य च वयो, क्या आयु थी। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की क्या आयु थी, 5 वर्ष। और 5 वर्ष में उन्होंने जो भगवत साक्षात्कार, और ऐसा भगवत साक्षात्कार की उनकी भक्ति के बलबूते पर भगवान को प्रकट होना पड़ा, साक्षात भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो यदि कोई आयु को अपनी अयोग्यता मानता है तो उसको खारिज किया ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज ने। कोई यदि अपने आचरणों को अयोग्यता मानता है, भगवान पुरुषोत्तम को मैं शरणागत नहीं होता क्योंकि मेरे आचरण ठीक नहीं है, उसको खारिज किया किसने, डकैत रत्नाकर और मृगारी ने। इसके पश्चात सुदामा, सुदामा का जो उदाहरण दिया गया है कि यदि कोई कहे कि अरे मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं सेटल्ड नहीं हूं, थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर भगवान की भक्ति करूं, थोड़ा घर अच्छा मेरा खुद के नाम पर हो जाए, अभी तो किराए का है, फिर ऑल्टर भी आ जाएगा, फिर बाद में भोग भी चढ़ेगा, फिर पैसे भी मिलेंगे थोड़े आपके हरे कृष्ण की भक्ति करने के लिए। तो सुदामा, उनके पास कौन सा धन था, कौन सा धन था। हम तो सुने हैं कि सुदामा वो जो पोहा भी लेकर गए वो भी किसी से भीख मांग कर लेकर गए, तो वो भी उनकी बीवी भीख मांग कर लेकर आई थी, घर पर वो भी नहीं था उनके पास, और वो भी कच्चे सूखे, वो चिथड़ों में बांधे हुए सुदामा लेकर गए और वो दे भी नहीं पाए, भगवान उसको छीन कर ले लिए। तो यदि कोई कहे कि धन संपत्ति मेरे पास नहीं है, मेरी ये अयोग्यता है, तो भगवान ने उसको खारिज किया सुदामा के उदाहरण से। कोई कहे कि अरे भगवान के सामने जाऊं तो थोड़ा दिखने योग्य होना चाहिए, थोड़ी तो खूबसूरती होनी चाहिए, थोड़ा तो सौंदर्य होना चाहिए, बाह्य सौंदर्य, तो कुब्जा, वो तो एक कुबड़ी स्त्री थी, उसका कुबड़ ऐसा था कि सब मजाक उड़ाया करते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए और कुब्जा, जो जिसको बोलते ना आजकल प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी से लोग सुंदर होना चाहते हैं, तो जो भगवान ने कुब्जा की सर्जरी ऐसी की कि इतना खूबसूरत बना दिया कुब्जा को, क्यों? क्योंकि कूब्जा वो स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण बलराम, विशेष रूप से भगवान कृष्ण से इतना आकर्षित हुई कि जो चंदन इत्यादि वो कंस के लिए ले जा रही थी, सोचो अवश्य ही ये समाचार कंस तक तो पहुंचा, और उसे पता भी होता कि कंस तक ये समाचार पहुंचेगा कि कंस के लिए उसके कोटे का चंदन कंस के शत्रु को दिया, वो भी मथुरा में, वो भी इस कुबड़ी स्त्री ने जो मेरे एहसान तले पल रही है। तो कुब्जा वो इतना निडर हो गई और इतना आकर्षित हो गई भगवान से स्पॉन्टेनियसली, वो दे तो भगवान ने उसे खूबसूरत बना दिया। तो कोई यदि ये अयोग्यता अपने सामने रखे, फिर अगला उदाहरण है, कोई कहे कि भाई मैं तो बहुत नीचे दर्जे में पैदा हुआ हूं, मैं नीच कुल में पैदा हुआ हूं, मेरा कुल नीच है, मेरी जाति नीच है, तो कहां मैं भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति कर पाऊंगा। तो फिर विदुर जी का उदाहरण दिया, विदुर तो दासी पुत्र थे, वंशक को विदुरस्य। और फिर कोई कहे कि अरे मेरे अंदर कोई पौरुष नहीं है, मेरे अंदर कोई करेज नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है, तो उग्रसेन का उदाहरण दिया गया है श्लोक में कि उग्रसेन महाराज हालांकि क्षत्रिय, परंतु उनके अंदर क्या शौर्य था, क्या बहादुरी थी कि उनके ही बेटे ने उनको बंदी बनाकर रखा हुआ था कंस ने। तो ये सारे जो उदाहरण दिए गए हैं, व्याधस्य का आचरण, ध्रुवस्य चवयो, कुब्जा, फिर सुदामा, फिर विदुर, उग्रसेन, अंत में इस श्लोक में कहा गया है भक्तिर तुष्यति केवलैर नच गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भगवान माधव ये सब कुछ नहीं देखते, वो केवल ये देखते हैं कि उसके अंदर प्रामाणिक भक्ति या मेरे प्रति स्नेह प्रेम कितना है। तो अब ये यदि हम ये पुरुषोत्तम मास या अधिक मास या पहले जो इसको मल मास कहा गया था, यदि इस मुद्दे को हम लें कि कैसे अयोग्यता से योग्यता भगवान देते हैं, तो इसके साथ साथ एक और सीख हम इस पुरुषोत्तम के महीने से ये लेते हैं कि जो इस महीने की दशा थी, तो दशा से दिशा, हम सब की स्थिति भी जैसे हमने शुरुआत में कहा कि इस मल मास के समान है, हमारी दशा नहीं दुर्दशा। और फिर हम लोग हमारी कुंडलियों में निकाल निकाल के क्या सब लोग, किसी की भी कुंडली आप निकाल लिए, कोई ना कोई दशा से ग्रस्त है। किसी की 7.5 चल रही है, किसी की 2.5 चल रही है, पता नहीं 3 भी 7.5 होती है, मतलब पूरा जीवन ही 7.5 में ही चल रहा है उसका, कि वो ऐड होती रहती 7.5। तो किसी की ये दशा, किसी की वो दशा, हर एक मनुष्य जीव किसी ना किसी दशा से पीड़ित है। क्यों दशा से पीड़ित है, क्यों ये दशाएं हमारी हो रही हैं, क्यों दुर्दशाएं हमारी हो रही हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमने कोई दिशा ही नहीं प्राप्त की है। इसलिए जब हम भक्ति के मार्ग में लगते हैं तो सबसे पहले हमें सही दिशा दी जाती है। तो आज हमने एक बहुत सुंदर अष्टकम हम गाने वाले हैं हमारे आज की कक्षा के पश्चात, जो कि इस महीने में हमें शुरुआत से गाना था, परंतु हमें इसकी जानकारी थोड़ी देर में मिली। चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम, घबराइए मत, हम बहुत सुंदर ये स्तोत्र है, इसका अर्थ जब आप सुनोगे तो ये कितना रेलेवेंट है हम लोगों के लिए। तो ये जो स्तोत्र है, ये अष्टकम जो है, इस अष्टकम को ये जो नाम मिला हुआ है, श्री चौराग्रगण्य, अग्रगण्य किसको बोलते हैं? जो टॉपर होता है, टॉपर जैसे बोलते हैं ना किसी स्कूल में कॉलेज में, अग्रगणीय है ये, टॉपर है ये, स्कूल कॉलेज का टॉपर है। तो इस अष्टकम में बताया गया है, पूरा अष्टकम है, कि चोरों में जो टॉपर है, सबसे बड़े चोर, मतलब कोई अगर इस संसार में अपने आप को चोर भी, उसके अंदर भी वो गर्वित महसूस करता है कि इससे बड़ा कोई चोर हुआ नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने चोर भी फीके पड़ जाते हैं। इसलिए श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम बताया गया है इस अष्टकम को। तो वो तो हम इस प्रवचन के पश्चात गाने वाले हैं, और आज ये भी बताया गया है कि निविधान ये है कि इस अष्टकम के साथ साथ जैसे हम दामोदर अष्टकम गाते हैं और भगवान को दीप अर्पित करते हैं, तो आज आप सब के लिए जैसे कार्तिक महीने में हम दीप दान करते हैं, तो दीप दान का भी आयोजन किया गया है। और हम आज से, आज शाम को भी गाएंगे इसे, और फिर कल से रोज जब तक पुरुषोत्तम का महीना है तब तक ये अष्टकम और दीपदान यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो पहले हम जीव की दशा पर आते हैं, पहले हम हमारा बायोग्राफी लेते हैं। तो जैसे एक तरफ जैसे हमने अभी भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण उनको चोरों में अग्रगणी बताया गया है, सबसे बड़े जो, क्यों? वो एक जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक जो मुझे बहुत पसंद है वो इस अष्टकम का पहला श्लोक है, जिसके अंदर बताया गया है कि भगवान न केवल उन्होंने माखन की चोरी की, न केवल उन्होंने गोपियों के वस्त्रों की चोरी की, क्यों उन्हें चोरों में सबसे बड़ा चोर बताया गया है? क्योंकि उन्होंने हमारे पाप कर्मों की चोरी की है जो शरणागत होते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में जब तक कोई भगवान श्री पुरुषोत्तम के शरणागत नहीं होता, जब तक उस दिशा को प्राप्त नहीं करता, तब तक उसकी दशा जो विकट दशा बताई गई है। तो इस विकट दशा का कारण क्या है? इस विकट दशा का कारण भी चोर है, परंतु माखन चोर नहीं। माखन चोर दिशा का कारण बनते हैं, हमारे दशा के कारण के भी चोर बताए गए हैं। और इसके विषय में भी एक श्लोक है नरसिंह करावलंबम स्तोत्र में से। तो इस स्तोत्र में, इस श्लोक में, स्तोत्र के श्लोक में बताया गया है कि बद्ध जीव की दशा कुछ चोरों के वजह से क्या हुई है। आज हमारी क्लास चोरों के ऊपर है। अंधस्य में ऋत विवेक महाधनस्य चौरैर प्रभो महाबलिभिरिन्द्रिय नाम ध्येय मोहांधकूप कुहरे विनिपाति तस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंभम। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि बद्ध जीव उसकी दशा क्या है। तो सबसे पहले उसकी दशा के विषय में बताया है कि कुछ महाबली चोर, बाहुबली चोर, ऐसे चोर जो कि जिनके अंदर इतनी शक्ति है, ऐसी शक्ति इनके अंदर कि बद्ध जीव सारे मिलकर भी प्रयास करें तो इस इन चोरों की शक्ति के ऊपर स्वयं विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और ये कौन से चोर हैं? हमारी स्वयं की इंद्रियां, हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, इनको पांच लुटेरे बताया गया है, लूट रहे हैं हमको हर क्षण। ये पांच इंद्रियां बिना भगवत भक्ति के हमें लूट रही हैं, ये पांच इंद्रियां। गरुड़ पुराण में वो प्रसिद्ध श्लोक है, पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंच भिरेव पंच एकम प्रमाथी सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। तो ये पांच प्राणियों का उदाहरण दिया गया है। सबसे पहला प्राणी है पतंगा। पतंगा वो अपनी आंखों को संतुष्ट करने जाता है, इर्द गिर्द अग्नि के परिक्रमा लगाता है और उसमें प्रवेश कर झुलस कर मर जाता है। अपनी एक आंख की इंद्रियों, चक्षु इंद्रियों को संतुष्ट करने जाता है, खत्म हो जाता है। मातंग हाथी है, वो अपनी स्पर्श इंद्रियों को संतुष्ट करने जाता है। नर हाथी है, मादा हाथी को स्पर्श करने, मादा हाथी नर हाथी को स्पर्श करने, वो उस माहूत के द्वारा गिरफ्तार हो जाता है हाथी। तो अपनी त्वक इंद्रिय को संतुष्ट करने जब ये हाथी जाता है तो लुट जाता है। पांच लुटेरे की बात कर रहे हैं हम। तीसरा प्राणी वो है कुरंग हिरण, जिसको वो शिकारी की बांसुरी की ध्वनि इतनी अच्छी लगती है कि स्तब्ध एक जगह पर खड़ा रहता है और वो शिकारी बांसुरी बजाना बंद करता है और बाण से उसको घायल कर मार डालता है। तो ये हिरण वो अपने प्राण खो बैठता है, अपने कर्णेन्द्रिय को संतुष्ट करने जब जाता है। वैसे ही भंवरा वो अपने नासिका को, नाक को संतुष्ट करने जाता है। सुगंधित कमल के पुष्प में बैठकर जब उसका कोश बंद हो जाता है तो वो भृंग सुबह मरा हुआ पाया जाता है। ऐसे ही मछली वो अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने जाती है, अपने प्राण खो बैठती है, मछुआरा पकड़ लेता है। तो ये पांच प्राणी अपने एक एक इंद्रियों को संतुष्ट करने गई और अपने प्राण खो बैठे ये पांच प्राणी। तो मनुष्य का क्या कहना कि जो पांचों इंद्रियों को एक साथ संतुष्ट करने में लगा हुआ है, एकम प्रमाथी, ये तो केवल एक एक इंद्रिय से प्रमत्त हुए थे, स कथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच, उस प्राणी का क्या कहना दो एक साथ पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा हुआ। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है अंधस्य में ऋत विवेक महाधनस्य चौरैर प्रभो महाबली भीर इंद्रिय नाम ध्येय। क्या नाम है इन लुटेरों का, इन महाबली लुटेरों का? इंद्रिय। तो कैसे चोरी किया इन्होंने, कैसे चोरी की और क्या चोरी की, ये दोनों जानने योग्य है। फिर सबसे पहले इन्होंने हमें अंधा बनाया। अब देखो जब चोर चोरी करने जाता है तो अंधेरे में चोरी करने जाता है, कोई देखे ना। तो एक है कि अंधेरा करो उस जगह पर जहां पर चोरी करनी है। दूसरा है यदि अंधेरा नहीं कर सकते तो जिसकी चोरी करनी है उसको अंधा बनाओ। तो साधारणता इस भौतिक संसार में चोर क्या करते हैं, अंधेरा करते हैं जहां चोरी करनी है या अंधेरे में जाते हैं चोरी करने के लिए। परंतु ये जो चोर हैं, कौन से, हमारे इंद्रिय है जो इनका नाम है, ये चोरों ने क्या किया है, उजाले में करेंगे हम। हिम्मत देखो इनकी, दिन दहाड़े चोरी करेंगे, अरे छाती ठोक के चोरी करेंगे, कोई पकड़ के दिखाए हमें कैसे, पहले उसे अंधा बनाएंगे। इसलिए नीति शास्त्र में बताया गया है कि अलग अलग प्रकार का अंधापन होता है। कामांध, जो काम से वशीभूत है, अर्थात काम वासना से जो वशीभूत जो अंधा हो जाता है, जैसे रावण। तो रावण ये ज्वलंत उदाहरण किसका है, कामांध। फिर एक है मदांध, मद अर्थात अहंकार, जैसे कि नलकुंवर मणिग्रीव, वो द्रव्य से भी और अपने मद से भी, अहंकारित से भी वो अंधे थे, इसलिए वो मदांध का उदाहरण है। तो कामांध, मदांध, लोभांध, जैसे कि धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र न केवल यहां से अंधा था बल्कि वो अपने लोभ के वजह से, दुर्योधन भी लोभ के वजह से जो अंधा। तो इसलिए इन चोरों ने क्या किया है, अंधा बनाया। तो ठीक है, यदि किसी को अंधा बना दिया तो कम से कम उसके अंदर विवेक तो होगा, चिल्लाकर वो किसी और की सहायता मांगेगा कि अरे मुझे लूट रहा है कोई, मेरी मदद करो। तो इन लुटेरों ने क्या किया है, हमारी दशा क्या बनाई है, न केवल अंधा बल्कि विवेक बुद्धि वो भी पहले चुरा ली। देखो विवेक बुद्धि चुरा ली, तो जब विवेक बुद्धि किसी की कोई चुरा लेता है तो उसे क्या लगता है कि वो स्वागत करता है इन चोरों का, आओ आओ आओ, हरि बोल आइए, ये लो चोरी करो। हाँ, तो बद्ध जीव क्या करता है कि उसका जो महाधन है, इस श्लोक में महाराज कुलशेखर कह रहे हैं महाधन, कौन सा महाधन, अपने स्वयं के हृदय की कृष्ण भक्ति, सुप्त कृष्ण भक्ति को लुटा रहा है, ऐसे धन को गंवा रहा है। और फिर उसकी दशा के विषय में इस श्लोक में बताया गया है मोहांध कूप, ऐसे अंधे कुएं जिसके अंदर पानी भी नहीं है, अंधा कुआं मतलब पानी भी जिसके अंदर नहीं, ऐसे कुएं में इस बद्ध जीव को फेंक दिया इन लुटेरों ने, अंधा बनाकर, उसकी विवेक बुद्धि छीनकर और महाधन उसका लूटकर उसे उस अंधे कुएं में। और ये अंधा कुआं कौन सा कुआं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कुआं, जिसके अंदर पुनरअपि जननम मरणम ये सब कुछ चल रहा है। तो अब भगवान, ये हमारी दशा, हमने क्या मुद्दा लिया था कि पुरुषोत्तम मास से हम क्या सीखते हैं, अयोग्यता से योग्यता, दशा से दिशा। तो ये जो सबसे पहला श्लोक है जो हम गाएंगे, तो ये इसकी शुरुआत हुई है जहां पर अब हमें अपने आप को किसी चोर के हवाले करना है, इन चोरों से बचते हुए इन चोर के हवाले अपने आप को करना है, कौन, माखन चोर के हवाले हमें करना है। तो पीछे दोहराइए, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो ये भगवान श्री गोपाल, श्री मदन गोपाल, जो कि प्रसिद्ध हुए नवनीत माखन की चोरी करने के वजह से प्रसिद्ध हुए, न केवल उसके लिए वो प्रसिद्ध हुए बल्कि गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, जो गोप गोपियां कन्याएं थीं उनके वस्त्रों की जो उन्होंने चोरी की उसके लिए वो प्रसिद्ध हुए। परंतु हमारे लिए वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं अग्रगणी चोरों में, वो इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि जिसकी चोरी कोई नहीं कर सकता, हमारे घर की धन संपत्ति कोई चोरी कर ले, हमारे सामग्रियों की कोई चोरी कर ले, परंतु हमारे पाप कर्मों की चोरी केवल भगवान श्री मदन गोपाल ही कर सकते हैं जब हम उन्हें शरणागत होते हैं। तो इसलिए ये जो दो उदाहरण हमने या दो श्लोक जो हमने लिए, एक जो जीव की दशा जो श्लोक हमने लिया कि पांच लुटोरों की वजह से, और फिर भगवान माखन चोर से जो दिशा मिलती है जब उनके शरणागत हम आते हैं। तो एक तरफ है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प लेना कि मुझे जो मेरे कृष्ण प्रेम रूपी माखन को भगवान श्री माखन चोर को अर्पित करना है, और दूसरी ओर है इस भौतिक संसार में रहने की जिद, स्टबननेस जिसको बोलते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हम आध्यात्मिक पथ पर आते हैं, कृष्ण भावनामृत की पद्धति को प्रारंभ करते हैं, तो हम अपने को बहुत कमजोर महसूस करते हैं कि वो दृढ़ निश्चय नहीं है, वो डिटर्मिनेशन नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि कोई नहीं बोल सकता कि उसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है। हाल ही में मुझे ये प्रश्न पूछा गया कि कैसे हम भक्ति के मार्ग में डिटरमाइंड रहे, कैसे कंसिस्टेंट रहें, कैसे हमारी मेहनत डालें, क्या करें, क्या उसका फॉर्मूला नुस्खा है। तो मैंने कहा कि देखो, इस भौतिक संसार में हम लोग आए आध्यात्मिक संसार को छोड़कर, और आध्यात्मिक संसार का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, जो सच्चिदानंद है, जो सत चित और आनंद से भरा हुआ चिंतामणि धाम, जहां पर कोई बीमारी नहीं है, जहां पर कोई बुढ़ापा नहीं है, जहां पर कोई भुखमरी नहीं है, जहां पर हर कदम पर केवल आनंद ही आनंद है। सोचिए ऐसे आनंदमय संसार को छोड़ने के लिए कितना डिटर्मिनेशन इस्तेमाल किया होगा हमने। ये भौतिक संसार जिसके विषय में क्या बताया गया है, ये असत है, ये अचित है, ये निरानंद है, ये दुखाल है, ये अशाश्वत है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे भरा हुआ ये शरीर, ये भौतिक संसार, ये सब इन सब से बना हुआ ये, इस भौतिक संसार को हम छोड़ नहीं पा रहे, तो सोचो कितना डिटर्मिनेशन हमने लगाया होगा उस सच्चिदानंद संसार को छोड़ने के लिए। तो कोई नहीं बोल सकता कि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है। अरे इतना डिटर्मिनेशन लगाकर छोड़कर आए उसको, जैसे अगर ये उदाहरण आपको समझ में नहीं आया तो लोकल उदाहरण यूज करते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने आपके सामने आपकी पसंदीदा फीस्ट रखी है, पूरी थाली में हर एक आइटम आपके पसंद के आइटम है, और आपको बोला गया है कि ये थाली में से एक भी आइटम आप चखो मत, चख नहीं सकते, और वो थाली आपके सामने होगी, और वो थाली को छोड़कर आपको गटर में से मल खाना है, सॉरी। तो सोचो उस पूरी 56 भोग की बनी हुई थाली को छोड़ने में कितना डिटर्मिनेशन लगेगा। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है कि वो 56 भोग की थाली भगवान आके अपने अलग अलग अवतारों में दिखाते हैं, लेकिन वो थाली को देखते हुए हम गटर में पड़े हुए, थाली को देख रहे हैं, कैसे डिटर्मिनेशन आएगा गटर से बाहर निकलने का। नहीं समझ में आया। यदि हम ये एहसास कर लें कि हम गटर में हाँ, उतना ही काफी है बाहर निकलने के लिए। लेकिन यहां पर तो और बताया गया है कि केवल इतना ही नहीं, गटर के बाहर आसार कितने अच्छे हैं, भविष्य कितना उज्जवल है, वो सब कुछ भी दिखाया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते दीज पिक्चर्स आर विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि ये पूरा प्रोसेस, इतने सुंदर भगवान के विग्रह, ये क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये ऑल्टर क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक नमूना हमारे सामने, कितना सुंदर होगा आध्यात्मिक संसार, और जो प्रोसेस है वो सब, तो सब कुछ दिखाया जा रहा है हमको, हमारे गटर की अवस्था महसूस कराई जा रही है। उसके साथ साथ हमको आध्यात्मिक संसार का 56 भोग की थाली, न केवल वो, उसमें से सैंपल चखाए जा रहे हैं, ये लो चखो, यही है एक्चुअल में, पूरी थाली वहां मिलेगी। इतना सब कुछ सुनने देखने के बाद भी फिर हम लोग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन गटर तो गटर है ना, गटर से कैसे बाहर निकले? तो जब ऐसी अवस्था में कोई भगवान को कहता है भगवान फिर भी गटर, तो भगवान कहते हैं तू फिर कल कर वहां गटर में मटर गश्ती। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए इस चिड़िया का, स्पैरोज डिटर्मिनेशन। भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद ने ये छोटी सी स्टोरी सुनाई है परपोर्ट में डिटर्मिनेशन के ऊपर, कि इस चिड़िया के अंडों को समंदर की लहरों ने अंदर ले लिया, तो चिड़िया का डिटर्मिनेशन क्या था? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि चिड़िया अपनी चोंच से पहले तो समंदर से मांगी कि मेरे अंडों को लौटा दो, समंदर कोई चिड़िया को घास नहीं दी समंदर ने। तो चिड़िया ने सोचा ठीक है, ये समंदर मेरे अंडों को नहीं लौटा रहा, तो मैं इस समंदर को जल रिक्त कर दूंगी, सुखा दूंगी, समंदर को सुखा दूंगी। कौन? चिड़िया। कैसे? अपनी चोंच से, चोंच में जितना पानी ले लेके वो फेंकने लगी। समंदर हंसी भी नहीं आ रही थी उसे, परंतु हुआ क्या कि चिड़िया के इस डिटर्मिनेशन को जब गरुड़ जी ने देखा तो गरुड़ जी वो आ गए और वो समंदर से कहे तुम्हें हंसी भी नहीं आ रही है, या तुम्हें हंसी आ रही है इस चिड़िया के ऊपर, तो मैं अब इस चिड़िया की मदद करता हूं तुम्हें खाली करने के लिए। तब समंदर, गरुड़ जी वो तो एक चुटकी में पूरा समंदर खाली कर दें, तो फिर समंदर ने तुरंत वो अंडे लौटा दिए। तो हम ये छोटी सी कहानी से क्या सीखते हैं कि जो चोंच में पानी ये चिड़िया लेके बाहर फेंक रही थी, वो हम लोग वो सब चिड़िया के समान, अगर हम डिटरमाइंड होना चाहते हैं तो हमारा जो प्रयास है वो क्या है? ये 16 माला, हमको लगता है 16 माला, बाप रे 16 माला, 2 घंटे, ये वो चोंच में पानी निकालने के समान है, तुच्छ, कुछ भी नहीं है, वो तुच्छ प्रयास है। किसके कंपैरिजन में? जो यहां पे रहने का हम प्रयास करते हैं उसके कंपैरिजन में ये 16 माला कुछ भी नहीं है, अगर उसको भी कंपेयर करें तो। और फिर समुद्र के पानी को खाली करना, यदि हम आ गए और आने के पश्चात हम लोग चाहे कैसे भी हमारे आचरण हो, कैसे भी अयोग्यता हमारी होगी, हम लोग जब आ जाते हैं तो प्रभुपाद का आश्वासन है यू कैन गो बैक होम बैक टू गॉड इन दिस लाइफ। तो ये असंभव उद्देश्य हमारे सामने, अरे कल परसों तो मैं केवल एक ऐसा भौतिकतावादी जीवन जी रहा था, हाँ केवल कांदा भजी खा रहा था, हाँ यहाँ का मिसल पाव खा के अनशन बकता हुआ ऐसा जीवन जी रहा था, और यहाँ पर आने के पश्चात हाँ तिलक, कंठी माला, धोती कुर्ता, साड़ी, हाँ इतना शुद्ध जीवन, तो क्या संभव है इस जन्म में? हाँ ये असंभव उद्देश्य लग रहा होगा, और हमारा प्रयास तुच्छ लग रहा होगा, परंतु जो प्राप्त होने वाला है वो है प्रेरणास्पद, जो कि हमारा है। और इसलिए जब हम हमारा प्रयास दिखाते हैं तो गरुड़ जी को भगवान भेजते हैं। तो गरुड़ जी को जब भगवान भेजते हैं वो शुरुआत में नहीं भेजते, इसलिए देखो भगवान द्रौपदी की भी सहायता करने आए। हम बुधवार को चर्चा कर रहे थे कि भगवान द्रौपदी की भी सहायता करने आए, कब? उस पॉइंट तक जिस पॉइंट द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। गजेंद्र, जब तक गजेंद्र 1000 वर्ष तक गजेंद्र लड़ रहा था उस मगरमच्छ से, उसके पश्चात लास्ट में जब गजेंद्र नहीं हो पाएगा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, कुछ सूझा नहीं, और फिर जब सूंड में वो कमल का पुष्प उठाकर, तो भगवान चुटकी बजाने पर नीचे आ गए। तो ये है हमारी आशा, हमारे प्रयास, वो हमारी हमें भगवान को नहीं दिलाएगा, हमारा प्रयास भगवान के हृदय को द्रवित करेगा और भगवान की सहायता से फिर हम उसे प्राप्त करेंगे। इसलिए हम कहते हैं When you run alone, it is called a race. And when God runs along with you, it's not just called a race, it's called His grace. जनता जब किसी को चुनती है उसे कहते हैं संसद, हम सब जानते हैं। जनता जब किसी को चुनती है उसे कहते हैं संसद, भगवान जब किसी को चुनते हैं उसे कहते हैं सत्संग। तो अब हमें केवल ये देखना है कि क्या हमारे प्रयासों से भगवान हमको चुनते हैं कि नहीं। हम लोग जो सत्संग में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो लगे हैं, ये भगवान ने चुना है, चुनिंदा, ये चुनिंदा चोजन वंस जिसको बोलते हैं वो हैं ये ग्रुप। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी अज्ञात सुकृति या इच्छा हमारी व्यक्त की होगी जिसको पूरा करने के लिए भगवान हमें चुने और यहां पर उन्होंने आयोजन किया हमारा आने के लिए। फिर सरेंडर मीन्स टू डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव फ्रॉम वेयर यू आर। बहुत ही संक्षिप्त रूप में यदि शरणागति को हम अनुवादित करें, टू डू व्हाट यू कैन, ये जरूरी नहीं है कि आपको केवल, जैसे चिड़िया ने, उसने उसका प्रयास किया, वो गिलहरी, रामायण में जो गिलहरी का उदाहरण है, गिलहरी ने अपना प्रयास, व्हाट यू कैन डू विथ व्हाट यू हैव, जो है तुम्हारे पास उसके साथ क्या कर सकते हो जहां पर स्थित हो। श्री वैष्णव संप्रदाय के एक अलवर आचार्य हुए पराशर भट्ट, तो पराशर भट्ट के जीवन की एक घटना है। एक बार वो अपने कुछ शिष्यों पार्षदों के साथ वो जंगल से गुजर रहे थे, रंगनाथ जी के पास जा रहे थे, जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने जंगल में देखा कि एक शिकारी जो कि शिकार कर रहा था अन्य प्राणियों का, तो वो शिकारी वो इतना निपुण था कि जैसे ही वो किसी के ऊपर अपना निशाना साधता शिकार अवश्य ही खत्म होना था। एक बार भी उसने अपना निशाना चुका नहीं, कोई बच के गया नहीं उसके शिकार से। तो एक खरगोश जो कि जानता था कि ये शिकारी जो है ये इतना निपुण है, मैं चाहे कितना भी चुस्त प्राणी हूं ये शिकारी कभी फेल नहीं हुआ है। तो पराशर भट्ट देख रहे हैं इस दृश्य को, जंगल से गुजरते हुए पराशर भट्ट इस दृश्य को देख रहे हैं कि ये शिकारी खरगोश पर निशाना साधे है। तो खरगोश ने क्या किया, अन्य खरगोशों को उसने देखा था कि अन्य खरगोश दूर, हिरण या खरगोश जो भी प्राणी, वो दूर भागना शुरू करते थे। परंतु ये खरगोश इसने क्या किया, ये जाकर इस शिकारी के पैर को लिपट गया। दूर भागने के बजाय वो शिकारी के पैर को जाकर चिपक गया ये खरगोश। तो पैर को लिपट गया तो शिकारी अब कैसे उसे तीर मारे, क्योंकि उसके पैर को भी लग जाएगी। तो शिकारी ने उस खरगोश को छोड़ दिया। पहली दफा ये शिकारी इसने अपने शिकार का वध नहीं किया। जब पराशर भट्ट ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और वो अपने पार्षदों शिष्यों को कहने लगे कि एक साधारण सा प्राणी और एक मर्त्य जीव ये शिकारी, देखा तुमने कि उस साधारण से खरगोश ने उस शिकारी के पैरों की शरण ग्रहण की और उस शिकारी ने क्षमा कर दिया। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करेंगे, उनके चरण कमलों पर जाकर लिपट जाएंगे, तो उनके अंदर तो इतनी करुणा भरी हुई है, करुणा से ओतप्रोत हैं वो, तो वो क्यों नहीं हमें क्षमा करेंगे, क्यों नहीं वो हमें अपनी शरण देंगे। इसलिए इसी मुद्दे को यदि हम दूसरे शब्दों में व्यक्त करें, सरेंडर मीन्स टू जॉइन द रेस एट योर पेस फ्रॉम योर प्लेस। सरेंडर मीन्स टू जॉइन द रेस, बैठे नहीं रहना है, यू हैव टू जॉइन द रेस, और अपने गति के अनुसार। कई होंगे जो खरगोश की तरह, जैसे खरगोश और कछुए की स्टोरी सुनी है हमने, कोई खरगोश की तरह तेज रफ्तार से दौड़ रहा होगा, कोई कछुए की तरह। डजंट मैटर फॉर कृष्णा वेदर यू आर अ टर्टल और वेदर यू आर अ रैबिट। सरेंडर मीन्स यू जॉइन द रेस, वॉट एवर योर पेस मे बी, फ्रॉम योर प्लेस। आपके सामने मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज रखता हूं। एक प्रश्न है, प्रश्न ये है, एक दृश्य है कि एक बहुत फुर्तीला कुत्ता वो एक खरगोश का शिकार करने के लिए दौड़ रहा है। कुत्ता बड़ा है, खरगोश छोटा है। खरगोश, हालांकि खरगोश भी चुस्त फुर्तीला प्राणी है, परंतु कुत्ते के जो स्टेप्स हैं वो बहुत लंबे लंबे स्ट्राइड्स ले सकता है। तो कुत्ता खरगोश के पीछे भाग रहा है उस खरगोश को पकड़ने के लिए। मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि क्या खरगोश जीतेगा या कुत्ता? Who will win? Dog or the rabbit? अच्छा, कितने कहते हैं कि कुत्ता वो जीत जाएगा, कुत्ता जीत जाएगा? कितने आप लोग बोलते हैं कि खरगोश जीतेगा? क्यों क्यों खरगोश जीतेगा? आपको खरगोश अच्छा लगता है? मैं भी ये मानता हूं खरगोश जीतेगा, लेकिन मैं कारण आपको बताऊंगा, पहले आप बताइए, पानी पीता हूं तब। द डॉग इज रनिंग फॉर फूड बट द रैबिट इज रनिंग फॉर हिज लाइफ। इफ यू कंसिडर कृष्णा कॉन्शियसनेस एज योर लाइफ, you will never be defeated, you will always win. But if you consider Krishna consciousness like kutte ke liye kya hai, theek hai ye khargosh nahi to shikar dusra kahin Vrindavan colony Dwarka se roti yahan wahan se mil jayegi. So the dog was simply running for food Therefore, his speed was not as fast as that of a rabbit, of that rabbit, because that rabbit was running for his life. Make Krishna consciousness not just your food, but your life. Isliye, we plan our future seeing our present. Whereas God plans our present based on our future. Bhagwan apna bhavishya samne aage dekhte hain aur uske anusar hamare present ka arrangement karte hain. Hum log kya karte hain? Hamare present ko dekhkar hamare future ka arrangement karte hain. Bhagwan ulta uska karte hain. Hamare iskon ke ek maharaj hue the, abhi to wo nahi hai, Purna Chandra Swami. प्रभुपाद के डिसाइपल. तो एक बार वो एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पास टाइम सुना रहे थे. तो जब वो ब्रह्मचारी थे तो अमेरिका में उनका सिस्टम है भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, कि वो वैन में पूरी भगवत गीता भरकर वो एक शहर से दूसरे शहर वैन में ही रहते हैं वो लोग, और वो वैन भी बड़ी मोबाइल होम जैसे, और एक शहर से दूसरे शहर. तो ये लोग ऐसे दो ब्रह्मचारी, पूर्णचंद्र महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे और उनके साथ एक और ब्रह्मचारी, तो ऐसे ये लोग दो, उन्होंने ये बुक वैन एक शहर से दूसरे शहर वो निकले. तो हुआ क्या कि वो जब एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचे तो वो जगह वो बहुत मतलब जैसे कंट्री साइड जिसको बोलते हैं, दिखने में बहुत सुंदर और ऐसे हिल स्टेशन टाइप. तो उन्होंने सोचा कि हम एक रात यहाँ पर रुकते हैं, बहुत ट्रैवलिंग हमारा हो रहा है, हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम वैन को पार्क कर सकें, जहाँ पर कोई हमें रात को टोके ना. तो उन्होंने एक पहाड़ी इलाका चुना और बुक डिस्ट्रीब्यूशन पूरे दिन भर किया उन्होंने, और वो पहाड़ी इलाके में जाकर सोचे कि यहाँ पर वैन पार्क करके वैन में ही रात को सोकर सुबह हम लोग दूसरे शहर के लिए निकलेंगे. तो वो लोग वैन अपनी पार्क किए उस पहाड़ी के इलाके में, रात को सोए, सुबह उठे और कहे कि पहले अपना सोला माला कर लेते हैं और फिर निकलते हैं. तो हुआ क्या कि इस दौरान वो अमेरिका के जिस इलाके में थे उस इलाके में एक सीरियल किलर वहां पर बहुत पाए जाते हैं, जो कि बेवजह लोगों को मारना, ऐसे कातिल. तो वहां के सारा जो पुलिस डिपार्टमेंट, शेरिफ डिपार्टमेंट, FBI, CIA और SWAT टीम, ये लोग सब लगे हुए इस सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं. और ये सीरियल किलर का लीड इनको मिला कि एक ऐसे वैन में ये सीरियल किलर, जिसका डिस्क्रिप्शन सेम वैन था जिसमें ये हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, जैसे होता ना अगर कोई मारुति कार, तो बहुत से सुजुकी, मारुति सुजुकी की बहुत से ऐसी कार सेम कलर. तो इनको पता चला कि पहाड़ी इलाके पर सेम डिस्क्रिप्शन का वैन पार्क्ड है इस पहाड़ी इलाके पर. सुबह सुबह इनको समाचार मिला जब ये हमारे दोनों ब्रह्मचारी अपना माला वैन में बैठ के कर रहे थे, अच्छा शांत माहौल था, चिड़ियों की वो चहकने की आवाज़ थी और ठंडा माहौल था, अच्छा शांत वातावरण. तो अपना जप कर रहे थे, नींद आ रही थी इनको जप करते करते. पता चला यहाँ से हेलीकॉप्टर से FBI, शेरिफ डिपार्टमेंट, SWAT टीम, ये लोग सब वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, whoever is there inside the van, come out of the van, raise your hands, on your knees, chilla rahe. Aur ye log mast, befikr, soye hue hain. Pehle inko samajh mein nahi aaya, inko lag raha hai koi to andar hai, dikh rahe hain aise, lekin bahar nahi aa rahe hain, inko awaaz sunai nahi de rahi kya. Fir aise karke unke department se, jo unke head the FBI ke, sheriff aur ye log sab gaye. पास में आए वैन के, अपने बंदूक वगैरह सब लेकर वो खिड़की पर जोर जोर से दस्तक दिया,
तभी हमारे उठे देखे, अरे बाप, सब जगह पर पुलिस ही पुलिस, सब अपना वो स्नाइपर और ये लोग सब लेकर अपने बंदूक बंदूक लेकर ताने हुए। तो इनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, हम तो यहाँ पर अपना खाली भगवत गीता, उनको भगवत गीता दिखा रहे हैं, भाई हमारे पास कोई गड़बड़ चीज नहीं है, हम तो खाली भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते हैं, चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं। तो फिर ये पुलिस वगैरह बाद में जान गए कि ये वैन उसी प्रकार की है, उसी मेक की है, परंतु ये उसकी नहीं है जिसको ये ढूंढ रहे थे, उस कातिल को, उसकी नहीं है। और ये लोग तो वो जानते थे हरे कृष्ण को। तो फिर पूरी टीम, वो उनका जो शरीफ था वो बोलता है तो क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम लोग। तो इन्होंने बताया कि ऐसे से हम अगले शहर में जाने वाले थे, ये जगह हमको अच्छी लगी, हमने सोचा एक रात यहाँ पे रुकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी तुम लोग अंदर क्या कर रहे थे। बोलने हम लोग हमारे सुबह का माला कर रहे थे, रोजरी, रोजरी के ऊपर हम लोग चैंटिंग कर। तुम लोग चैंटिंग नहीं कर रहे, सो रहे थे तुम लोग। तो अब ये भी जान गए कि आप सो रहे थे, सही में सो रहे थे तुम लोग। हाँ वो तो हो जाता है, कभी कभी नींद आ जाती है, आप भी शुरू करोगे ना तो फिर देखते हैं। तो वो जाते जाते वो शरीफ वो उनको डांट के गया, ठीक से किया करो तुम लोग। तो वो पूर्णचंद्र महाराज वो बाद में अपना साक्षात्कार बता रहे थे कि देखो भगवान कितने दयालु हैं कि यदि कोई भक्त तो उनका नाम जप करते हुए सो भी जाए तो भगवान FBI को, SWAT टीम को, शेरिफ को, पुलिस डिपार्टमेंट को, सबको मिलके भेजते कि जाके मेरे इन दो भक्तों को उठाओ, ये सो रहे हैं। तो ये यदि दृढ़ विश्वास हमारा भगवान में होगा, अवश्य रक्षिबे इति कृष्ण, कि भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो अंत में एक आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे, भगवान पर दृढ़ विश्वास कि जो दशा से दिशा के पथ पर हम आए। तो ऋषिकेश में एक अंधे बाबा जी रहा करते थे और उनका नियम था कि वो रोज अपनी साधना करने के लिए ऋषिकेश और हिमालय की घाटियों में, हिमालय के पर्वत की घाटियों में वो विचरण करते। तो उनके एक हाथ शिष्य थे, वो अब बोलते थे गुरुजी आप अंधे हो और आप अकेले निकल जाते हो ये ऐसे ऐसे पर्वतों की चोटियों पर हिमालय की, कहीं किसी खाई में आप गिर गए, आपको दिखाई भी नहीं देता, कभी आप किसी खाई में गिर गए तो आपको डर नहीं लगता। तो ये बाबा जी अपने शिष्य को कहे मेरे साथ कल तुम चलना। वो बोले ठीक है, हमें तो आंखें हैं फिर भी हमें डर लगता है, आप बिना आंखों के बिना दृष्टि के आप जाते हो। तो गुरुजी ने कहा नहीं है मेरे साथ चलो। तो दूसरे दिन सुबह गुरुजी के पीछे पीछे इनका शिष्य, तो गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा कि जहां सबसे गहरी खाई है उस खाई के लास्ट पॉइंट तक मुझे लेकर चलो। तो शिष्य और घबरा गए, ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी को लेकर गए वो, बोले ये सबसे गहरी खाई है। तो गुरुजी ने पूछा इसके आगे बस कुछ नहीं है, खाई है। हाँ गुरुजी इसके आगे खाई है, एक कदम भी आगे मत लेना। तो गुरुजी ने शिष्य को कहा अब मुझे धक्का मारो। शिष्य को क्या बोलते हैं, मुझे अब धक्का मारो। बोले गुरुजी मैं पागल नहीं हूं, मैं क्यों आपको धक्का मारूंगा, मैं आपका शिष्य हूं, मैं क्यों आपको धक्का मारूंगा। गुरुजी बोलते हैं यही तो मैं बोल रहा हूं। कह रहे तू एक बद्ध जीव है, तू मुझे धक्का नहीं मारेगा तो तुझे क्या लगता है वो जो मेरे भगवान है क्या वो मुझे खाई में गिरने देंगे। इसलिए भगवान की केवल काबिलियत को मत देखो, भगवान की नियत को देखो। along with his competency, his character. He will never allow his surrendered devotee to ever fall down. और जब हमें इस प्रकार का विश्वास भगवान के ऊपर आएगा और हम अपना सर्वस्व भगवान पर न्योछावर करेंगे, तब होगा क्या? अयोग्यता से योग्यता की हमारी यात्रा पूरी होगी, जैसे कि इस पुरुषोत्तम मास से हम सीखे, और हमारी दशा से हमें मिलेगी दिशा, और हमारी दशा जिसकी हमने चर्चा करी उस श्लोक से, जिसके अंदर ये पांच लुटेरे जो अंधाधुन और हमें अंधा बनाकर लूट रहे हैं जन्म जन्मांतर से, ये लुटेरों से हम जो सबसे बड़े लुटेरे यहां पर हैं चौराग्रगण्य, इनके हम शरणागत होंगे, और फिर ये जो हमारे अंदर सुप्त कृष्ण प्रेम जो कि माखन के समान है, उसे चुराने के लिए हर समय लालायित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।